एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
मेरे खुदा मेरे प्रभु तू सबसे महान, मेरे खुदा मेरे प्रभु तू सबसे महान, दुनिया में कोई नहीं तेरे समान, सारे जहां में तू सर्वशक्तिमान, सारे जहां में तू सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि करती तेरे गुणगान, सारी सृष्टि करती तेरे गुणगान, मेरे खुदा मेरे प्रभु तू सबसे महान। पर मेरी आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी, हाँ तुझ पर मेरी आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी, प्यासा हूँ मैं प्रभु प्यास बुझा दे, प्यासा हूँ मैं प्रभु, प्यास बुझा दे तेरे वचन में, चलना सिखा दे तेरे वचन में, चलना सिखा दे मेरे खुदा मेरे प्रभु तू सबसे महान। ये दुनिया है एक सपना, कौन यहाँ नहीं कोई अपना, हो ये दुनिया है एक सपना, कौन यहाँ नहीं कोई अपना, अर्पण करता हूँ जीवन अपना, अर्पण करता हूँ जीवन अपना, बना ले प्रभु मुझे अपना, बना ले प्रभु मुझे अपना, मेरे खुदा मेरे प्रभु तू सबसे महान, दुनिया में कोई नहीं तेरे समान, सारे जहां में तू सर्वशक्तिमान, सारे जहां में तू सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि करती तेरे गुणगान, सारी सृष्टि करती तेरे गुणगान, मेरे खुदा मेरे प्रभु तू सबसे महान, मेरे खुदा मेरे प्रभु तू सबसे महान, मेरे खुदा मेरे प्रभु तू सबसे महान।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्यारे श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं, हमारे मनों को खोल दे और तेरे वचन से बहुताय से आशीष दे पिता, मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचन को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूँ, तेरे लोगों के संग हो पिता, मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो, उन्हें भी तो तेरे वचन के द्वारा बहुत आय से आशीष दे जब वह सुनते हैं और उसके पीछे चलने के लिए मन बनाते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है बपतिस्मा का अर्थ। बपतिस्मा के द्वारा हम पाप के प्रति हमारी मृत्यु और जीवन की नवीनता में चलने के हमारे उद्देश्य की गवाही देते हैं। बपतिस्मा का अर्थ इसके देने के तरीके से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अल्फ्रेड फ्लमर ने कहा, केवल जब बपतिस्मा डूब के द्वारा दिया जाता है तभी इसका पूरा महत्व देखा जा सकता है। यह मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक है। जैसे पानी से ढकना भारी परेशानी और क्लेश का प्रतीक है, भजन संहिता 42:7, 69:2, 124:4-5। इसलिए यीशु का पानी का बपतिस्मा भविष्यवाणी किए गए उसके दुख, मृत्यु और दफनाने का प्रतिनिधित्व करता है। Markus 10:38, Luke 12:50 और उसका पानी से ऊपर आना बाद में उसके पुनरुत्थान की बात करता है। Romans 6:3-5 मसीह की वेदना के प्रतीक के रूप में बपतिस्मा का कोई महत्व नहीं होता यदि प्रेरितिक कलिसिया ने डूब के द्वारा बपतिस्मा के अलावा बपतिस्मा के किसी अन्य तरीके का उपयोग किया होता। इसलिए डूब के द्वारा बपतिस्मे के लिए सबसे मजबूत तर्क एक धार्मिक तर्क है। यह पाप के लिए मृत और परमेश्वर के लिए जीवित होने का प्रतीक है। बपतिस्मा में विश्वासी हमारे प्रभु की वेदना के अनुभव में प्रवेश करते हैं। पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। रोमियो 6:3-4। मसीह के साथ एक विश्वासी के रिश्ते की अंतरंगता मसीह यीशु का बपतिस्मा, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा और बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए जैसी अभिव्यक्तियों के माध्यम से प्रकट होती है। हावर्ड कहते हैं, बपतिस्मा के प्रतीकात्मक कार्य में विश्वासी मसीह की मृत्यु में प्रवेश करते हैं और वास्तविक अर्थों में वह मृत्यु उसकी मृत्यु बन जाती है और वह मसीह के पुनरुत्थान में प्रवेश करता है और वह पुनरुत्थान उसका पुनरुत्थान बन जाता है। विश्वासियों का हमारे प्रभु की वेदना में प्रवेश करने का क्या अर्थ है? पहला, पाप के लिए मृत। बपतिस्मा में विश्वासी उसकी मसीह की मृत्यु की समानता में उसके साथ एकजुट हो गए हैं, रोमियो 6:5, और मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, गलातियों 2:20। इसका अर्थ है कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा, रोमियो 6:6-8। विश्वासियों ने अपनी पूर्व जीवन शैली को त्याग दिया है, वे पाप के लिए मर चुके हैं और पुष्टि करते हैं कि पुरानी बातें बीत चुकी है, 2 कुरिन्थियों 5:17। उनका जीवन परमेश्वर में मसीह के साथ छिपा हुआ है। बपतिस्मा पुराने जीवन के क्रूस पर चढ़ाने का प्रतीक है। यह न केवल मृत्यु है बल्कि गाड़ा जाना भी है। हम उसके साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, कुलुसियों 2:12। जिस प्रकार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे गाड़ा जाता है, उसी प्रकार जब विश्वासी पानी की कब्र में उतरता है तो वह पुराना जीवन जो यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद बीत गया दफन हो जाता है। बपतिस्मा में विश्वासियों ने संसार को त्याग दिया है। आज्ञा के पालन में प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, 2 कुरिन्थियों 6:17। उम्मीदवार शैतान की सेवा को त्यागने और जीवन में मसीह को ग्रहण करने को सार्वजनिक करते हैं। प्रेरित कलीसिया में पश्चाताप की पुकार में बपतिस्मा की बुलाहट शामिल थी, प्रेरितों के काम 2:38 देखें। इस प्रकार बपतिस्मा सच्चे पश्चाताप का भी प्रतीक है। विश्वासी व्यवस्था के उल्लंघन के लिए मर जाते हैं और यीशु मसीह के शुद्ध रक्त के माध्यम से पाप की क्षमा प्राप्त करते हैं। बपतिस्मा समारोह एक आंतरिक शुद्धिकरण का प्रदर्शन है, पापों का धुलना जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। दूसरा, परमेश्वर के लिए जीवित। मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति हमारे जीवन में काम करती है। यह हमें जीवन के नएपन में चलने में सक्षम बनाती है, रोमियो 6:4। पाप के लिए अमृत, परंतु परमेश्वर के लिए हमारे प्रभु मसीह यीशु में जीवित हैं, रोमियो 6:11। हम गवाही देते हैं कि पुराने स्वभाव पर विजयी जीवन की एकमात्र आशा एक पुनर्जीवित प्रभु के अनुग्रह में है, जिसने पवित्र आत्मा की सक्रिय करने वाली शक्ति के माध्यम से एक नया आध्यात्मिक जीवन प्रदान किया है। यह नया जीवन हमें मानवीय अनुभव के उच्च स्तर पर ले जाता है, हमें नए मूल्य, आकांक्षाएं और इच्छाएं देता है, जो यीशु मसीह के प्रति प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करता है। हम अपने उद्धारकर्ता के नए शिष्य हैं और बपतिस्मा हमारे शिष्यत्व का प्रतीक है। यह एक वाचाई संबंध का प्रतीक है। पुराने नियम के समय में खतना ने परमेश्वर और इब्राहिम के बीच वाचीय संबंध को चिन्हित किया। उत्पत्ति 17:1-11 में वाचा का चिन्ह को हम प्राप्त करते हैं। इब्राहिम की वाचा के आत्मिक और राष्ट्रीय दोनों पहलू थे। खतना राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक था। इब्राहिम स्वयं और उसके परिवार के 8 दिन या उससे अधिक उम्र के सभी पुरुषों का खतना किया जाना था। उत्पत्ति 17:10-14 और 25-27। जो पुरुष खतना रहित रहे उसे परमेश्वर के लोगों में से नाश किया जाना था, क्योंकि उसने वाचा को तोड़ा था। उत्पत्ति 17:14। यह कि वाचा परमेश्वर और इब्राहिम के बीच बनाई गई थी, एक बालिक इसके आध्यात्मिक पहलू को प्रकट करता है। इब्राहिम का खतना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराने के उसके पिछले अनुभव को दर्शाता है और पुष्टि करता है। उसका खतना उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप था जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था। रोमियो 4:11। लेकिन केवल खतना ही वाचा के सच्चे आध्यात्मिक पहलू में प्रवेश का आश्वासन नहीं देता है। बार बार परमेश्वर के प्रवक्ताओं ने चेतावनी दी कि आत्मिक खतने से कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा। अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। व्यवस्था विवरण 10:16 में हम इसे पढ़ते हैं। इसका तुलना हम कर सकते हैं उसी किताब व्यवस्था विवरण का 30:6 से और यिर्मयाह 4:4 से। हृदय के खतना रहित को अन्य जातियों के साथ दंड दिया जाना था। यिर्मयाह 9:25-26। जब यहूदियों ने यीशु को मसीहा के रूप में अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी वाचा के संबंध को तोड़ दिया। उसके चुने हुए लोगों के रूप में उसकी विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया। दानियल 9:24-27। हालांकि परमेश्वर की वाचा और उसकी प्रतिज्ञाएं वही रही, उसने एक नए लोगों को चुना। आत्मिक इज़राइल ने यहूदी राष्ट्र का स्थान लिया। गलातियों 3:27-29 और 6:15-16। मसीह की मृत्यु ने नई वाचा की पुष्टि की। लोगों ने आध्यात्मिक खतना के माध्यम से इस वाचा में प्रवेश किया। यीशु की प्रायश्चित मृत्यु के प्रति विश्वास की प्रतिक्रिया। मसीहों के पास खतना रहितों के लिए सुसमाचार है। गलातियों 2:7। नई वाचा में आंतरिक विश्वास की आवश्यकता है, ना कि उन लोगों के बाहरी संस्कार की जो आत्मिक इज़राइल के होंगे। जन्म से कोई यहूदी हो सकता है, लेकिन केवल नए जन्म के द्वारा ही कोई मसीही हो सकता है। मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। गलातियों 5:6। जो मायने रखता है वह खतना जो हृदय का और आत्मा में है। रोमियो 2:28-29। बपतिस्मा यीशु के साथ मुक्ति संबंध का संकेत इस आध्यात्मिक खतने का प्रतिनिधित्व करता है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। कुलुसियों 2:11-12। ईश्वर द्वारा किए गए आध्यात्मिक खतना के माध्यम से शारीरिक देह को उतार कर बपतिस्मा लेने वाला अब मसीह को पहन लेता है और यीशु के साथ वाचा के संबंध में प्रवेश करता है। परिणाम स्वरूप वह वाचा के वादों की पूर्ति प्राप्त करने के लिए तैयार है। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन दिया है। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। गलातियों 3:27-29। जो लोग इस वाचा के संबंध में प्रवेश कर चुके हैं वे परमेश्वर के आश्वासन का अनुभव करते हैं, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यिर्मयाह 31:33। यह मसीह की सेवा के लिए अभिषेक का प्रतीक है। अपने बपतिस्मा के समय यीशु ने पवित्र आत्मा का एक विशेष उपहार प्राप्त किया जो उसके पिता द्वारा सौंपे गए विशेष कार्य के प्रति उसके अभिषेक या समर्पण को दर्शाता है। मत्ती 3:13-17 और प्रेरितों के काम 10:38। उसके अनुभव से पता चलता है कि पानी का बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा एक साथ हैं। पवित्र आत्मा ग्रहण किए बिना एक बपतिस्मा अधूरा है। प्रेरित कलीसिया में पवित्र आत्मा का उंडेला जाना आमतौर पर जल बपतिस्मे के तुरंत बाद होता था। इसलिए आज जब हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं तो हम स्वर्ग की 3 महान शक्तियों और अनंत सुसमाचार के प्रसार के लिए समर्पित पवित्र और एकजुट हो जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को पाप से शुद्ध करके हमें इस सेवकाई के लिए तैयार करता है। यहूना ने घोषणा की कि यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मत्ती 3:11। यशायाह ने प्रकट किया कि परमेश्वर अपने लोगों को न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा उनकी अशुद्धियों से शुद्ध करेगा। यशायाह 4:4। मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा। परमेश्वर ने कहा और तुम्हारा रंग पूरी रीति से दूर करूंगा। यशायाह 1:25। पाप के लिए परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों 12:29। पवित्र आत्मा जो उसके प्रति समर्पण करते हैं उन सभी के पापों को भस्म करके उनके जीवन को शुद्ध करेगा। फिर पवित्र आत्मा उन्हें अपने उपहार प्रदान करता है। उसके उपहार एक विशेष दिव्य दान है जो बपतिस्मे के समय दिए जाते हैं ताकि विश्वासी को कलीसिया की सेवा करने और उन लोगों की सेवा करने में सक्षम बनाया जा सके जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे ने प्रारंभिक कलीसिया को गवाही देने की शक्ति दी। प्रेरितों के काम 1:5-8। और केवल वही बपतिस्मा कलीसिया को राज्य के अनंत सुसमाचार की घोषणा करने के अपने विशेष कार्य को पूरा करने में सक्षम करेगा। मत्ती 24:14 और प्रकाशित वाक्य 14:6। यह कलीसिया में प्रवेश करने का प्रतीक है। एक व्यक्ति के पुनर्जन्म या नए जन्म के संकेत के रूप में यूहन्ना 3:3-5 बपतिस्मा उस व्यक्ति के मसीह के आत्मिक राज्य में प्रवेश को भी चिन्हित करता है क्योंकि यह नए विश्वासी को मसीह से जोड़ता है। यह सदैव कलीसिया के द्वार के रूप में कार्य करता है। बपतिस्मे के द्वारा प्रभु नए शिष्यों को विश्वासियों की देह में जोड़ता है, उसकी देह कलीसिया। प्रेरितों के काम 2:41-47 और 1 कुरिन्थियों 12:13। तब वे परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। तो आइए हम परमेश्वर के कलीसिया से जुड़े और परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाएं। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं वे लोग बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के कलीसिया और उसके परिवार में शामिल हो सकते हैं और इसके बाद हम उसके प्रेम और सच्चाई का गवाही दे सकते हैं और परमेश्वर की महानता और उसकी महिमा को प्रदर्शित कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, तेरी महिमा हो। हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए पिता। तू हम सबों को बुलाता है, हमें बपतिस्मा के द्वारा आत्मा और पानी के बपतिस्मा के द्वारा हमें तेरे कलीसिया में, तेरे परिवार में सदस्य बना और हमें एक विश्वासी जीवन, सच्चाई का जीवन जी करके एक अच्छा नमूना दिखाने की मदद कर। पवित्र आत्मा सबों को राज की सुना जा सकता है।
मेरे यीशु प्रभु मेरे दिल में तू आ, मेरे दिल का तो तू ही सरकार है। मेरे यीशु प्रभु मेरे दिल में तू आ, मेरे दिल का तो तू ही सरकार है। कोई और इस दिल में रहेगा नहीं, कोई और इस दिल में रहेगा नहीं, ये तो तेरे दरबार है, ये तो तेरे ही रहने का दरबार है। मेरे यीशु प्रभु मेरे दिल में तू आ, मेरे दिल का तो तू ही सरकार है। बेजान चीजों में भी नहीं, तू मिट्टी में नहीं, पत्थर में नहीं, किसी बेजान चीजों में भी नहीं, तू जीवित जीवित में है, तू जीवित जीवित में है, ये तो तेरा ही सारा संसार है, ये तो तेरा ही सारा संसार है मेरे यीशु।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiresamc@sudaadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।